समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है परिक्रमा, तो श्रोताओं अगले आधे घंटे में हम आपको लेके चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर। आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और उनसे लेंगे खास जानकारी। इसके अलावा आर्थिक जगत और खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी। And for you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes three-day U.S. visit, including bilateral talks with several leaders, Quad Leaders Summit, UN Summit of the Future, and a meeting with CEOs of prominent U.S. companies.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है।
इलेक्शन कमीशन मीट्स टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ झारखंड इन रांची टू रिव्यू पोल प्रिपेयरनेस फॉर असेंबली इलेक्शंस।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज की।
And in tennis, Indo-French pair of Yuki Bhamri and Albano Olivetti take on French duo of Sadio Dombia and Fabian Ribaul in the men's double summit clash in Chengdu, China. And now, Sarfirozi, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about 6 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Well, the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme introduced by Prime Minister Narendra Modi on September 23, 2018, marked 6 years yesterday. Celebrating the day, the Ministry of Health in a statement said, each Ayushman card represents hope and access to quality health care. The government will strive for a healthier India where everyone thrives. Ayushman Bharat is designed to implement transformative interventions that address the entire spectrum of health care across primary, secondary and tertiary levels. It follows a continuum of care approach and consists of two interrelated components.
जी, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। आयुष्मान भारत के पहले हिस्से में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की गई, जिन्हें पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में जाना जाता था। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के करीब लाना है। दूसरा हिस्सा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत हर परिवार को एक साल में अस्पताल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया गया है।
Yes, Sarfarozi, and now a bit of a background. Well, early on September 11, the Union Cabinet had approved health cover to all senior citizens aged 70 years and above, irrespective of income, under the flagship scheme Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. And with this approval, all senior citizens of the age of 70 years and above, irrespective of their socio-economic status, would be eligible to avail the benefits of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.
जी अभिषेक, और बताया जा रहा है कि 70 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने के लिए एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है और 70 वर्ष के जो बुजुर्ग पहले से ही इस योजना में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के स्टेप कम होंगे क्योंकि उनका आधार कार्ड पहले से ही इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा। और श्रोताओं, आपको बताते चलें कि ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है जो 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ सदस्यों को अस्पताल में इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। ये योजना रोगी की किसी तरह की सर्जरी सहित उसके टेस्ट और दवाओं का खर्च भी वहन करती है। इस योजना के तहत 7,37,00,000 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिनमें से 49% महिला हैं। इस योजना के तहत लोगों को 1,00,000 करोड़ रुपए तक की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। और अभिषेक, जो 2011 की जनगणना थी उसकी तुलना में अब देश की जनसंख्या में करीब 12% की वृद्धि हो चुकी है जिसको देखते हुए जनवरी 2022 में सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या को बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया। देश भर में कार्यरत 37,00,000 विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को कवर करने के लिए इस योजना का और विस्तार किया जाएगा।
Yes, and Ayushman Bharat represents a groundbreaking shift in India's healthcare landscape by seamlessly integrating comprehensive care across primary, secondary and tertiary levels. And through its umbrella features, the scheme not only addresses immediate health needs, but also emphasizes preventive care and health promotion, making healthcare more accessible and equitable. And the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY stands as a testament to India's commitment to equitable healthcare for all, particularly the most vulnerable populations. And over the past 6 years, this pioneering initiative has significantly transformed the healthcare landscape, providing essential coverage to millions and reducing financial burdens associated with medical expenses. The expansion of benefits to senior citizens and the comprehensive nature of the scheme underscores its commitment to inclusivity and accessibility. And as the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana continues to evolve, it not only addresses the immediate healthcare needs of families, but also lays the groundwork for a healthier future, ensuring that no one is left behind. And the legacy of the health scheme is one of hope and resilience as it strives to build a robust healthcare system that prioritizes the well-being of every citizen in India. Well, moving on, after concluding his successful 3-day visit to the US, Prime Minister Narendra Modi is now on his way to New Delhi. And during a hectic visit, Prime Minister Modi attended the Quad Leaders Summit, a large Indian-American community event, addressed the United Nations Summit of the Future, and held multiple bilateral meetings with heads of several other countries. And a correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this detailed report.
Prime Minister Narendra Modi began his U.S. visit with a meeting with the President of the United States, Joe Biden. In a special gesture, President Biden hosted the meeting at his home in Wilmington, Delaware. The two agreements signed during the meeting include Indo-Pacific Economic Framework Agreement and India-US Drug Policy Framework. In his address at the Quad Leaders Summit, PM Modi said, Quad is committed for a free, open, inclusive and prosperous Indo-Pacific. Prime Minister stressed that Quad is here to stay, to assist, to partner and to complement.
हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं।
At the Cancer Moonshot event, PM Modi has said that India will contribute 40 million vaccine doses for Indo-Pacific countries under Gavi, the Vaccine Alliance and Quad initiatives. On the sidelines of the summit, PM Modi also held bilateral meetings with Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the second day of his visit, Prime Minister attended a massive Indian-American community event at NASA Coliseum in Long Island, New York. Lauding the Indian diaspora's role in India-US bilateral relations, Prime Minister said that their skills and talents are unmatched. At the event, Prime Minister Modi also gave the Pushp Mantra for making India a developed nation.
आपको एक शब्द याद रहेगा पुष्प, और मैं इस पुष्प को डिफाइन करता हूं पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प।
लेटर इन द डे प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्टेड विद टेक लीडर in New York in a round table anchored by MIT School of Engineering. The tech round table primarily focused on artificial intelligence, biotechnologies and semiconductor technologies. Prime Minister highlighted the economic transformation happening in India, particularly in electronics and IT manufacturing, semiconductors, biotech and green development. PM invited the tech leaders for investment in India in these sectors.
बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूँ।
The round table was followed by PM's back-to-back bilateral engagements with Prime Minister of Nepal, KP Sharma Oli, Crown Prince of Kuwait, Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, and Palestinian President Mahmoud Abbas. On the third and last day of his visit, speaking at the Summit of the Future at the United Nations General Assembly, PM Modi added that digital public infrastructure should be a bridge and not a barrier. Mr. Modi also said that the success of humanity lies in collective strength and not in the battlefield.
जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी।
Talking about reforms of multilateral institutions, PM said that global institutions need reforms as reforms are the key to relevance.
Global संस्थाओं में reforms आवश्यक है. Reform is the key to relevance. वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के ढाए नए नए मैदान भी बन रहे हैं. इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन।
On the sidelines of UNGA, Prime Minister Modi also held talks with President Volodymyr Zelensky of Ukraine in New York. Prime Minister conveyed that India remains open to provide all support within its means to facilitate a lasting and peaceful solution of the conflict, thus concluding a very intense and successful visit to the United States. From New York, Himani Rana, Akashwani News.
और अब श्रोताओं, समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास जानकारी है। अभिषेक, ओडिशा में महिलाओं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 17 तारीख को भुवनेश्वर में इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही 25 लाख रूपये से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त भी दी गई। इस पर पेश है कटक से एक रिपोर्ट।
ओडिशा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता 10 किस्तों में प्रदान करने का फैसला किया है। इस पर आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य की उपमुख्यमंत्री तथा महिला व बाल विकास मंत्री प्रभाती परिडा कहती हैं,
ये नया सरकार है उड़ीसा में और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनोखा गारंटी को काम पे लगाने जा रही है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को वो लाभ मिलेगा और गांव में महिला सशक्त होगी, अर्थनैतिक भागीदारी बढ़ेगी, तभी गांव समृद्ध होगी। यही इस योजना के लक्ष्य है। इसमें लक्ष्यपदित दीदी भी बनाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के हाथ से समाज को आगे ले जाने के लिए इस योजना को सफल रूपायण की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आगे सुभद्रा योजना उड़ीसा की विकास के लिए एक मूल पिंड होगा।
इस वित्तीय सहायता से महिलाएं छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करने के साथ अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान कर सकती हैं। उम्मीद है कि सुभद्रा योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करेगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार कटक से मैं इतिश्री सिंह राठौर।
All forms of tobacco use are harmful and there is no safe level of exposure to tobacco. Every year, more than 80 lakh people die globally due to the consumption of tobacco, and in India, nearly 13 lakh people face death due to the same. We have a report.
To stop the consumption and create awareness about the disadvantages, the Ministry of Health and Family Welfare today launched the Tobacco-Free Youth Campaign 2.0. The 60-day campaign aims to safeguard the health and well-being of India's young generation from the devastating impact of tobacco use to create a tobacco-free generation and a healthier India. Addressing the event, Minister of State for Health and Family Welfare Pratap Rao Yadav said that the contribution of youth is important in creating a tobacco-free generation. The campaign will focus on offering educational materials, promoting initiatives such as enforcement drives and establishment of tobacco-free villages and educational institutions to encourage a tobacco-free lifestyle among young people across India. For Parikrama, Priya Mondal.
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर्स की सर्वाधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पिछले दिनों यहां पहली बार बटरफ्लाई सर्वे किया गया, जिसमें कई नई जानकारियां मिली। एक रिपोर्ट।
बाघ की दहाड़ से गूंजने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तितलियों का भी एक अनूठा संसार मौजूद है। टाइगर रिजर्व के उप संचालक पी के वर्मा के अनुसार यहां 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पिछले दिनों देश भर के 61 तितलियों पर अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने टाइगर रिजर्व के जंगलों में सर्वे किया। दो दिवसीय इस सर्वे के बाद 5 से अधिक तितलियां दुर्लभ प्रजाति की मिली है। इनमें कॉमन रेड आई, ब्लैक राजा, फॉरगेट मी नॉट, किंग क्रो और इंडियन डॉट नेट तितलियां शामिल हैं। सर्वे के दौरान सटीक आंकड़े जुटाने के लिए 20 टीमें बनाई गई, जो पैदल बिना किसी यंत्र के नमी वाले क्षेत्रों में गई और तितलियों का अध्ययन किया। सर्वे में कई नई प्रजातियां भी मिली है, इन पर आगे रिसर्च किया जाएगा। बांधवगढ़ आने के लिए अब इन तितलियों का आकर्षण एक नया कारण बन गया है। आकाशवाणी भोपाल से परिक्रमा के लिए मैं प्रशांत शर्मा।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we pay tribute to the great Indian revolutionary Pritilata Vadidar, who sacrificed her life for the freedom of India at the young age of 21 on this day in 1932. She was devoted to the cause of Indian independence and was inspired by the valor of Rani Lakshmibai since her school days.
She completed her education in Kolkata and took up the job of headmistress at English medium secondary school in a native place in Chittagong. It was here that she joined revolutionaries under the leadership of famous freedom fighter Master Da Surya Sen.
Pritilata firmly believed that women should also take a leading role in the armed struggle against the British.
One of Priti's brothers was involved in revolutionary politics, and it was he who introduced her to Surya Sen, who accepted Pritilata as the first woman member of his revolutionary group. She was a prominent member of the special revolutionary operations for the destruction of the telephone and telegraph office and the capture of the reserve police line in Jalalabad Hills Battle in 1932. Thereafter, Pritilata led 15 revolutionaries to the Pahartali European Club in a successful raid.
However, Pritilata, dressed as a man, was trapped without a way of escape on that fateful night and chose to give up her life rather than being a prisoner to the British administration. Her martyrdom created a huge stir and acted as an inspiration for revolutionaries across India. We salute her unflinching love for the nation.
Today, we also remember freedom fighter Bhikaji Rustam Kama, popularly known as Madam Kama, who was born on this day in 1861 in Mumbai.
It was in London that she met nationalist Shyamji Krishna Varma and Dadabhai Nauroji and got inspired to work for the Indian freedom struggle.
Kama supported the founding of the Indian Home Rule Society in London in 1905. Later, she relocated to Paris and co-founded the Paris Indian Society, together with other notable members of the movement for Indian sovereignty living in exile. Kama wrote, published and distributed revolutionary literature for the movement.
On the 22nd of August 1907, Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart, Germany, and appealed for human rights, equality and freedom from imperialist Great Britain. She unfurled what she called the flag of Indian independence. Later, this flag was brought into British India by Indulal Yagnik and is currently on display at the Maratha and Kesari Library in Pune. The flag raised by Kama also served as one of the templates from which the current national flag of India has been created.
Madam Kama's legacy continues through her love and sacrifice for Indian independence. Several Indian cities have streets and places named after her. On 26 January 1962, India's 11th Republic Day, the Indian Post and Telegraph Department issued a commemorative stamp in her honor. Her life is one of grit, determination and love for the nation. We salute her indomitable spirit. In business news today, domestic benchmark indices ended flat after hitting new highs in today's volatile trading session. The BSE Sensex surged to an all-time peak of 85,163, while the NSE Nifty crossed 26,000 mark for the first time in the intraday trade. At close, the Sensex was down 14 points or 0.2% at 84,914, while the Nifty ended flat marginally up at 25,940. And on to some sports news. In Chengdu Open Tennis Men's Doubles Finals, the clash between the third-seeded Indo-French pair of Yuki Bhambri and Albano Olivetti and the top-seeded French pair of Sadio Dombia and Fabian Ribaul is underway at Sichuan International Tennis Center in Chengdu, China. In the men's double semifinals matches, the French pair of Dombia Ribaul defeated the Mexican Australian pair of Miguel Reyes Varela and John Patrick Smith 4-6, 6-3, 12-10, while India's Yuki Bhambri and Albano Olivetti of France defeated the second seeded doubles pair of Ivan Dodik and Rafael Matos 6-3, 7-6, 11-9 to enter the finals. The Chengdu Open is a men's ATP Tour 250 series tournament played on outdoor hard courts.
हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद स्वदेश वापस लौटे भारतीय टीम के सदस्यों का आज जोरदार स्वागत किया गया। चेन्नई में प्रशंसकों, अधिकारियों और परिवारों के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंदा, आर वैशाली और पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन तड़के वापस लौटे। और अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं भारतीय अभिनेत्री पद्मिनी रामचंद्रन को जिनकी आज पुण्यतिथि है। 16 साल की उम्र में पद्मिनी ने अपना हिंदी फिल्म में अपना करियर शुरू किया। एक्ट्रेस पद्मिनी का फिल्मी करियर लगभग 30 साल रहा, जिस दौरान उन्होंने राज कपूर, जेमिनी गणेशन, शम्मी कपूर जैसे कई कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक गीत।
अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी
And Theodore Sus Geisel Passed away on this day in 1991, he was an American children's author and cartoonist. He is known for writing and illustrating more than 60 books under the pen name Dr. Seuss. His work includes many of the most popular children's books of all times, selling over 600 million copies and been translated into more than 20 languages by the time of his death. And also, Sir Firozi, Mahinder Amarnath was born on this day in 1950. He is a former Indian cricketer, cricket analyst and actor. He is the son of Lala Amarnath, the first post-independence captain of India. Mohinder was a vice-captain of the Indian team that won the 1983 Cricket World Cup, where he was a player of the final. He was also part of the Indian squad, which won the 1985 World Championship of Cricket. Mohinder is commonly mentioned by players and cricket pundits as the best Indian batsman against express pace. And in 2009, he received the Seek and I Do Lifetime Achievement Award, the highest honor Indian board can bestow on a former player.
आज भूपति मोहन सेन की पुण्यतिथि है. ये भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे. इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और द्रव यांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके दिए योगदान के लिए इन्हें साल 1974 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया.
Asit Sen was born on this day in 1922. He was an Indian film director, cinematographer, documentary filmmaker and screenwriter, and he worked in both Bengali and Hindi cinema. He was born in Dhaka, now in modern-day Bangladesh, when it was part of East Bengal in British India. He directed 17 feature films in Hindi and Bengali and was most known for his films Deep Jole Jai in 1959 and Uttar Falguni 1963 in Bengali, Momta 1966, Khamoshi 1969, Anokhi Raat 1968 and Safar 1970 in Hindi.
आज प्रताप नारायण मिश्र जी की जयंती है. इन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है. प्रताप नारायण मिश्र ने लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में खास प्रसिद्धि पाई. देश प्रेम, समाज सुधार और साधारण मनोरंजन आदि इनके निबंधों के मुख्य विषय थे. प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, राज सिंह, अमर सिंह इनकी प्रमुख कृतियां हैं.
फ्रांसिस स्कॉट की फिट्ज़रॉय वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1896. He was widely known simply as Scott Fitzgerald, an American novelist, essayist, and short story writer. He is best known for his novels depicting the flamboyance and excess of the Jazz Age, a term he popularized in his short story collection, Tales of the Jazz Age. And during his lifetime, he published 4 novels, 4 story collections, and 164 short stories. Although he achieved temporary popular success and fortune in the 1920s, Fitzgerald received critical acclaim only after his death and is now widely regarded as one of the greatest American writers of the 20th century.
आज लिंबा राम का जन्मदिवस है. ये भारत के प्रथम प्रसिद्ध तीरंदाज हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की. इन्होंने 1992 के एशियाई चैंपियनशिप मुकाबले में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता. साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में लिंबा राम मात्र एक अंक से पदक पाने से चूक गए. इन्हें 1991 में भारत के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
Linda Louie Lady McCartney Eastman was born on this day in 1941. She was an American photographer and musician. She was a keyboardist and harmony vocalist in the band Wings, which also featured her husband Paul McCartney of the Beatles. Let's listen in to a hit track, Monk Berry Moon Delight, from her album Ram.
So
and Indira Banerjee was born on this day in 1957. She is a former judge of the Supreme Court of India and the 8th female judge in the history of the Supreme Court. Previously, she served as a Chief Justice of the Madras High Court, the second woman to hold the position in India.
आज आरती साहा की जयंती है. ये भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक थी. ये भारत तथा एशिया की ऐसी पहली महिला तैराक थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया. 1960 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।